आज हम अपनी चर्चा चियांग काई शेक के साथ जारी रखेंगे। आइए हम आज चियांग काई शेक के बारे में चर्चा करें। कैंटन में अपनी सरकार को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने के बाद कुमिंगतांग दल के सम्मुख मुख्य कार्य यह था कि संपूर्ण चीन को एक शासन की अधीनता में लाने का प्रयास किया जाए। समझौते द्वारा यह बात संभव नहीं थी। इसके लिए डॉक्टर सन्यात सेन ने जो प्रयास किया था वह असफल रहा। अब किमिंगतांग सरकार के सम्मुख केवल यही मार्ग शेष था कि वह सैन्य शक्ति का प्रयोग कर चीन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का प्रयास करे। 1926 में कैंटन की सरकार की सेनाओं ने उत्तर की ओर अपनी विजय यात्रा आरंभ की। इन सेनाओं का प्रधान सेनापति चियांग काईशेक था। उसका जन्म 1887 में चेकियांग प्रांत में हुआ था। फिर से गौर करेंगे, उसका जन्म 1887 में चेकियांग प्रांत में हुआ था। बचपन में ही वह क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आ गया था। उसकी शिक्षा सैनिक ढंग पर हुई थी। चीन में सैनिक शिक्षा प्राप्त कर चुकने पर वह उच्च सैनिक शिक्षा के लिए जापान भी गया था। डॉक्टर सन्यात सेन के संपर्क में आकर वह उनका कट्टर अनुयायी बन गया। डॉक्टर सन्यात सेन के संपर्क में आने के बाद 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद उसने रूस की भी यात्रा की थी और वहां रहकर उसने समाजवादी व्यवस्था का भी गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। समाजवाद के प्रति उसके हृदय में आदर का भाव था, पर वह स्वयं को कम्युनिस्ट नहीं बना था। डॉक्टर सन्यात सेन की प्रेरणा से उसने वहामपुआ नामक स्थान पर एक मिलिट्री एकेडमी की स्थापना भी की थी। इस एकेडमी में किमिंगतांग दल के नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उन्हें सैनिक अफसर का पद ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता था। चियांग काई शेक केवल सैनिक दृष्टि से ही सुशिक्षित नहीं था, साथ ही वह आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से भी भली भांति परिचित था। चीन के प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ उसने कानून और आधुनिक ग्रंथों का भी भली भांति अनुशीलन किया था। उत्तरी चीन पर कैंटन सरकार की सेनाओं के आक्रमण की योजना रूसी सैनिक सलाहकार जनरल ब्लूचर द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना के अनुसार पहले हैंको पर आक्रमण किया गया। हैंको पर कब्जा करने में चियांग काईशेक की सेनाओं को कोई कठिनाई नहीं हुई। इसके बाद नानकिंग और शंघाई पर आक्रमण किया गया और इन दोनों नगरों को भी विजय कर लिया गया। इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कैंटन सरकार की सेनाओं के अतिरिक्त किमिंगतांग दल के प्रचारक भी इस समय चीन में बहुत प्रयत्नशील थे। सेनाओं के आगे आगे ये प्रचारक चलते थे और जनता को अपने दल के मंतव्यों का भली भांति बोध कराते जाते थे। राष्ट्रीय एकता की बात चीन की सर्वसाधारण जनता को बहुत आकर्षक लगी, जिस कारण वह कैंटन सरकार की सेनाओं का विरोध नहीं करती थी। पर इस समय किमिंगतांग दल के आंतरिक विरोधों ने भी गंभीर रूप धारण करना आरंभ कर दिया था। कम्युनिस्ट लोग किमिंगतांग दल में सम्मिलित थे और वे इस समय सर्वसाधारण चीनी जनता में अपने सिद्धांतों का प्रचार करने में तत्पर थे। बोल्शेविक क्रांति के बाद मॉस्को में सन्यात सेन यूनिवर्सिटी के नाम से एक नई संस्था की स्थापना हुई थी, जिनमें चीनी विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ये विद्यार्थी जब रूस से उच्च शिक्षा प्राप्त करके चीन वापस आते थे तो स्वाभाविक रूप से कम्युनिस्ट सिद्धांतों के प्रचार का उद्योग करते थे। हैंको की विजय के बाद वहाँ किमिंगतांग दल का जो शासन स्थापित हुआ था उसमें कम्युनिस्टों का बहुत जोर था। किमिंगतांग दल के कम्युनिज्म के विरोधी सदस्य इस बात से बहुत चिंतित हुए। चियांग काईशेक की इन लोगों के साथ सहानुभूति भी थी। कम्युनिज्म का समर्थन करने वाले चीनी युवक जहां एक ओर अपने देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे वहाँ। साथ ही विदेशी राज्यों का प्रभुत्व भी उन्हें किसी भी प्रकार से सह नहीं था। इस समय यूरोप के प्रमुख राज्य रूस की कम्युनिस्ट सरकार के प्रबल विरोध में थी। वे उसके विरुद्ध संघर्ष भी कर रहे थे। इस दशा में चीन के कम्युनिस्ट भी यदि पश्चात देशों के प्रति विद्वेष का भाव रखते हो तो वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इसलिए जब मार्च 1927 में कुमिंगतांग दल की सेनाओं ने नानकिंग पर कब्जा किया तो अनेक चीनी नौयुवकों ने विदेशी लोगों पर भी आक्रमण किए। बहुत से पाश्चात्य लोग इस हमले में मारे गए। यदि पाश्चात्य जहाज इस समय हस्तक्षेप ना करते तो शायद विदेशी लोगों के लिए नानकिंग से अपनी जान बचाकर निकल सकना भी कठिन हो जाता। नानकिंग पर कुमिंगतांग सेनाओं का कब्जा हो जाने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि विदेशी राज्यों ने यह मांग की कि जिन सेनापतियों व सैनिकों द्वारा विदेशी लोगों पर हमले किए गए हैं उन्हें दंड दिया जाए और विदेशी राज्यों को इन हमलों से जो क्षति हुई है उसके लिए उन्हें उपयुक्त हर्जाना दिया जाए। विदेशी राज्यों की इन मांगों के कारण कुमिंगतांग सरकार को एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। चियांग काईशेक और उसके अनुयायी स्वयं भी कम्युनिस्ट लोगों से परेशान थे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे कम्युनिस्ट लोगों को वश में रखने के लिए सब प्रकार से उचित कार्रवाई करेंगे। इस समय से कम्युनिस्टों और चियांग काईशेक के अनुयायियों में विरोध निरंतर बढ़ता गया। कुमिंगतांग दल के दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष में इस समय जो संघर्ष शुरू हुआ चीन के इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। इस संघर्ष के कारण चियांग काईशेक कम्युनिज्म का प्रबल विरोधी बन गया और इस वाद को विनष्ट करना ही उसने अपना मुख्य ध्येय बना लिया। नानकिंग पर कब्जा हो जाने के बाद इसी नगर को कुमिंगतांग सरकार की राजधानी बनाया गया। कम्युनिस्ट लोग हैंको और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में बहुत प्रबल थे। चियांग काईशेक ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। बहुत से कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया। इनमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी। सैकड़ों कम्युनिस्ट विद्यार्थियों को प्राणदंड दिया गया। रूस के जो कम्युनिस्ट चीन में कार्य कर रहे थे उन्हें अपने देश को वापस लौट जाने के लिए विवश होना पड़ा। अपने विरोधियों को विनष्ट कर 1928 में चियांग काईशेक ने उत्तर में पेकिंग की ओर प्रस्थान किया। इस समय पेकिंग पर मंचूरिया के सिपहसालार चांग तशो लिन का आधिपत्य था। वह चियांग काईशेक की सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका। जून 1928 में पेकिंग पर भी कुमिंगतांग दल का कब्जा हो गया। चांग तशो लिन ने अपनी सेनाओं के साथ लेकर मंचूरिया की ओर प्रस्थान कर दिया, पर अभी वह अपनी राजधानी मुकदन नहीं पहुंच पाया था कि मार्ग में एक बॉम्ब द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। चियांग काईशेक का विचार था कि इसी समय मंचूरिया पर भी आक्रमण कर दिया जाए और उसे भी जीतकर कुमिंगतांग सरकार के शासन में ले आया जाए, पर दक्षिणी मंचूरिया पर जापान का प्रभाव स्थापित था। जापानी लोग नहीं चाहते थे कि चियांग काईशेक की सेनाएं इस प्रदेश पर आक्रमण करें। उनके विरोध के कारण कुमिंगतांग सरकार ने निश्चय किया कि अभी मंचूरिया पर आक्रमण करने का यत्न न किया जाए। चांग तशो लिन की मृत्यु के बाद उसका लड़का हा सुयह लियांग मंचूरिया का सिपहसालार बना। लिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमिंगतांग सरकार के साथ समझौता करने के लिए तैयार था। परिणाम यह हुआ कि युद्ध के बिना ही मंचूरिया पर कुमिंगतांग सरकार का आधिपत्य स्थापित हो गया। पेकिंग की विजय और मंचूरिया द्वारा कुमिंगतांग का आधिपत्य स्वीकृत कर लेने पर चीन में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इस समय सारे चीन में एक सुव्यवस्थित सरकार का शासन कायम हो गया था। चीन के विविध प्रदेशों में अभी तक भी अनेक ऐसे सिपह सलारों की सत्ता विद्यमान थी जो क्विमिंग तोंग सरकार की अपेक्षा कर स्वतंत्र शासकों के समान आचरण करने के लिए उद्यत रहते थे। चियांग काई शेक को अनेक बार इन सिपह सलारों के साथ भयंकर युद्ध लड़ने पड़े। इनके अतिरिक्त कम्युनिस्ट लोग भी अनेक प्रदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। क्यांगसी, आनहुई, फुकियन प्रांतों के अनेक प्रदेशों पर 1930 से 33 तक कम्युनिस्ट लोगों का प्रभुत्व रहा। 1930 में कुछ समय के लिए कम्युनिस्टों ने हुनान प्रांत की राजधानी पर भी अपना कब्जा कायम कर लिया था। चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचंड रूप से सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। पूर्वी चीन के धनपति लोग इस कार्य में उसकी दिल खोल कर सहायता कर रहे थे। अनेक सिपह सलारों और कम्युनिस्ट लोगों की सत्ता के कारण यह कह सकना कठिन है कि 1928 के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी, पर इसमें संदेह नहीं, क्विमिंगतोंग दल के कृतित्व के कारण चीन अब राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो गया था। पेकिंग की विजय के बाद चीन में राष्ट्रीय एकता बहुत अंशों में स्थापित हो गई थी। डॉक्टर सन यात सेन द्वारा चीन की उन्नति के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया उसका पहला भाग अब पूर्ण हो चुका था। क्विमिंगतोंग दल के सम्मुख अगला कार्य था कि सरकार का व्यवस्थित रूप से संगठन किया जाए और लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हुआ जाए। अब चीन की राजधानी नानकिंग को बनाया गया। क्विमिंगतोंग दल का उत्तरी चीन पर अधिक प्रभाव नहीं था। पेकिंग में उन लोगों की बहुसंख्या थी जो नई प्रवृत्तियों के विरोधी थे। 1911 में भी सुधारवादी व क्रांतिकारी लोगों ने यह प्रयत्न किया था कि चीन की राजधानी पेकिंग की बजाय नानकिंग को बनाया जाए, पर युआन शिकाई के विरोध के कारण जनता की यह इच्छा क्रिया में परिणित नहीं हो सकी थी। अब क्विमिंगतोंग दल नानकिंग को चीन की राजधानी बनाने में सफल हुआ। धीरे धीरे विदेशी राजदूत भी पेकिंग को छोड़कर नानकिंग चले आए। अगस्त 1928 में क्विमिंगतोंग पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक बैठक इस उद्देश्य से हुई कि नई चीनी सरकार की शासन व्यवस्था और संगठन के संबंध में निर्णय किए जाएं। इस समय चीन के शासन का संगठन जिस प्रकार किया गया उसमें मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहली शर्त, सरकार पर क्विमिंगतोंग पार्टी का प्रभुत्व है। दूसरी, सरकार पर नियंत्रण रखने और राज्य की नीति का निर्धारण करने के लिए एक सेंट्रल पॉलिटिकल काउंसिल का संगठन किया जाए। इस काउंसिल के सदस्य निम्नलिखित प्रकार से रहें: क्विमिंगतोंग दल की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सब सदस्य और सेंट्रल स्टेट काउंसिल के सब सदस्य। सेंट्रल स्टेट काउंसिल के सदस्यों की संख्या 35 थी और इन्हें तथा क्विमिंगतोंग दल की केंद्रीय कमेटी के सदस्यों को मिलाकर राज्य की केंद्रीय राजनैतिक सभा सेंट्रल पॉलिटिकल काउंसिल के संगठन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार राज्य की केंद्रीय सभा में क्विमिंगतोंग दल का संगठन बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरी, राज्य की केंद्रीय सरकार में 5 विभाग, जिन्हें हम चीनी भाषा में युआन कहते हैं, हो: शासन युआन, व्यवस्थापक युआन, न्याय युआन, परीक्षा युआन और नियंत्रण युआन। पाश्चात्य राज्यों की सरकारों में शासन, व्यवस्थापन और न्याय, ये 3 विभाग बनाए जाते हैं, पर चीन में इन 3 विभागों के अतिरिक्त परीक्षा और नियंत्रण के 2 अन्य विभाग भी कायम किए गए। ये दोनों नए विभाग चीन की प्राचीन परंपरा को दृष्टि में रखकर स्थापित किए गए थे, क्योंकि मांचू शासन के काल में परीक्षा पद्धति और सरकारी कर्मचारी के कार्यों पर नियंत्रण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। केंद्रीय सरकार के समान प्रांतों की सरकारों का भी इस समय पुनः संगठन किया गया और प्रांतीय सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल पॉलिटिकल काउंसिल के ढंग पर प्रांतीय काउंसिलों की भी स्थापना की गई। मई 1931 में चीन के लिए नया शासन विधान तैयार हुआ था और 1934 में उसे संशोधित किया गया था। 1931 और 34 के शासन विधानों के अनुसार चीन की राज्य शक्ति सर्वसाधारण जनता में निहित थी और संविधान में नागरिकों के जन्मसिद्ध अधिकारों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया था। सब मनुष्य कानून की दृष्टि में समान हैं, नस्ल, लिंग, जाति आदि के आधार पर नागरिकों की स्थिति और अधिकारों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। सबको निर्वाचन में समान रूप से वोट देने का अधिकार होगा। संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार को स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते यह अधिकार सार्वजनिक हित का विरोधी न हो। इस प्रकार के जन्मसिद्ध अधिकार संविधान द्वारा स्वीकृत किए गए। राज्य के शासन में किमिंगतांग दल के प्रभुत्व को स्थापित किया गया, पर प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार भी दिया गया कि वे इस दल का सदस्य बन सके। चीन के इन नए संविधानों में जनता को प्रतिनिधित्व देने की बात को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि किमिंगतांग सरकार को इस समय इतना अवकाश नहीं था कि वह चीन में लोकतंत्र शासन के विकास पर ध्यान दे। उसके सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि देश में अकेंद्रीय भाव की प्रवृत्तियों को वश में लाकर किस प्रकार राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जाए। नई सरकार का अधिपति चियांग काई शेक था और उसकी सब शक्ति अपने विरोधियों के विरुद्ध संघर्ष में लगी हुई थी। आइए अब हम चियांग काई शेक के विरोधियों पर चर्चा करें। नानकिंग की किमिंगतांग सरकार के अधिपति चियांग काई शेक को जिन विरोधी शक्तियों के साथ सामना करना पड़ रहा था, उन्हें हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, विभिन्न प्रदेशों के सिपह सलार जो अवसर पाते ही स्वतंत्र हो जाने के लिए उद्यत रहते थे। दूसरा, किमिंगतांग दल के अंतर्गत वाम पक्ष के लोग। और तीसरा, कम्युनिस्ट दल। इन तीन विरोधी तत्वों के बारे में आप समझेंगे तो 1929 से 33 के बीच चीन के इतिहास और परिवर्तन के बारे में आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी। 1929 में चियांग काई शेक ने उद्योग किया कि विभिन्न सिपा सलारों से बातचीत करके एक ऐसा समझौता कर लिया जाए जिससे कि वे नानकिंग सरकार की अधीनता में रहते हुए उसके साथ सहयोग करने को उद्यत हो। पर इस प्रयत्न में उसे सफलता नहीं हो सकी। उसका मुख्य प्रतिस्पर्धी फेंग यू ही सांग था। इस शक्तिशाली सिपहसालार का विरोध करना चियांग काई शेक के लिए कठिन साबित हो रहा था। चियांग काई शेक और फेंग यू ही सांग दोनों इस बात के लिए उत्सुक थे कि मंचूरिया के सिपहसालार चांग हुए लियांग और शानसी प्रांत के सिपहसालार येन हसी सान का सहयोग प्राप्त करें। फेंग यू हिसांग अपने प्रयत्न में आंशिक रूप से सफल हुआ और येन हिसी शान का सहयोग उसे प्राप्त हो गया, पर चांग हुए लियांग इस संघर्ष में उदासीन रहा। चियांग काई शेक इन दो शक्तिशाली सिपहसालारों को तभी परास्त कर सकता था जबकि चांग हुए लियांग जैसे किसी प्रबल सिपहसालार की सहायता उसे प्राप्त हो। अंत में उसने मंचूरिया के सिपहसालार को यह आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया कि फेंग यू ही सांग और येन हसी सान को परास्त कर इन प्रदेशों पर उसके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। चांग हुए लियांग की सहायता प्राप्त कर चियांग काई शेक अपने प्रतिद्वंदी सिपहसालारों को परास्त करने में समर्थ हुआ, पर इससे मंचूरिया के सिपहसालार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। यद्यपि वह नाम को नानकिंग सरकार की अधीनता स्वीकार करता था, पर क्रियात्मक दृष्टि से वह उत्तरी चीन के विशाल प्रदेश का स्वतंत्र शासक था। चियांग काई शेक को इसी ढंग से अन्य भी अनेक सिपहसालारों के साथ संघर्ष करना पड़ा और इन संघर्षों को दृष्टि में रखते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्तुतः नानकिंग सरकार की शक्ति अभी संपूर्ण चीन में स्थापित नहीं हुई थी। पेकिंग सरकार की पृथक सत्ता का अंत हो जाने के बाद भी अभी चीन एक नहीं हुआ था। इससे पहले ही चीन में आंतरिक युद्ध अभी भी जारी थे, केवल उत्तरी चीन में ही नहीं अपितु दक्षिणी चीन में भी चियांग काईशेक के विरोधी विद्यमान थे। कुमिंगतांग दल में जो वामपक्षी लोग थे उनके प्रधान नेता वांग चिंग वेई और चेन कुंग पो थे। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि चियांग काईशेक के खिलाफ फेंग यू ही सांग और रियन हसी सान की सहायता प्राप्त करें, पर जब ये सिपहसालार परास्त हो गए तो वामपक्षी नेताओं ने कैंटन को राजधानी बनाकर अपनी पृथक सरकार का संगठन कर लिया। क्वांगसी प्रांत की सेनाएं इस प्रयत्न में उनकी पीठ पर थी। कैंटन में एक नई सरकार का संगठन हो जाने के कारण चियांग काईशेक की स्थिति डावाडोल हो गई थी। यह सरकार भी अपने को कुमिंगतांग दल कहती थी और यह दावा करती थी कि डॉक्टर सन्यात सेन ने चीन में जिस क्रांति का आरंभ किया था उसे यही सरकार पूरा कर सकती है। 1931 के आरंभ में कैंटन सरकार की सेनाओं ने नानकिंग पर आक्रमण किया। इस समय जापान चीन में अपने प्रभुत्व के विस्तार में विशेष रूप से तत्पर था। विदेशी शत्रु का मुकाबला करने के लिए कुमिंगतांग दल के वाम और दक्षिण पंछी नेताओं ने यह उचित समझा कि परस्पर मिलकर समझौता कर ले, इसलिए नानकिंग की सरकार का पुनः संगठन किया गया और शासन शक्ति का प्रयोग तीन व्यक्तियों को सौंप दिया गया। तीन व्यक्तियों की इस कमेटी के सदस्य चियांग काईशेक, वांग चिंग वेई और हु हान मिन थे। इस कमेटी में चियांग काईशेक की शक्ति बहुत कम थी, पर वाम और दक्षिण पक्षों का यह सहयोग अधिक देर तक कायम नहीं रह सका, शीघ्र ही उनमें फूट पड़ गई और कुमिंगतांग दल के वामपक्षी लोगों ने कैंटन में अपनी पृथक सरकार का फिर से संगठन कर लिया। चियांग काईशेक के विरोधियों में सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट लोग थे और 1927 में इन्हें नष्ट करने के लिए जो प्रयत्न किए गए थे वे सामयिक रूप से अवश्य सफल हो गए थे, पर उनके कारण चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अंत नहीं हो पाया था। जिस समय कुमिंगतांग दल की सेनाएं पेकिंग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थी, कम्युनिस्ट को अपने उत्कर्ष के अवसर का मिल गया और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर लिया। क्यांगसी प्रांत के पर्वतों में आश्रय लेकर कम्युनिस्ट दल ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था और क्यांगसी, आनहुई और फुकियन प्रांतों में अनेक प्रदेशों पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन प्रदेशों में कम्युनिस्ट सिद्धांतों के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था भी कायम कर ली गई थी। बड़ी जमींदारियों का अंत कर जमीन को किसानों में बांट दिया गया था और सह उद्योग प्रणाली के अनुसार बैंकों की स्थापना भी कर ली गई थी ताकि कृषकों और व्यावसायिक उत्पादकों को अपने कार्यों के लिए रुपए की प्राप्ति सुगम से हो। अफीम की खेती के लिए जो भूमि पहले प्रयोग में लाई जाती थी उस पर अब अनाज की खेती शुरू कर दी गई थी और अफीम की खेती को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कम्युनिस्ट लोगों ने देश की आर्थिक उन्नति पर बहुत ध्यान दिया था। सिंचाई के लिए अनेक योजनाओं को क्रिया में परिणत किया गया था और नदियों की बाढ़ों से खेतों की रक्षा करने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई थी। टैक्स की इस ढंग से व्यवस्था की गई थी कि जिससे अमीरों पर टैक्स का बोझ अधिक हो और गरीबों को कम टैक्स देना पड़े। शहरों में व्यावसायिक उन्नति पर भी कम्युनिस्ट लोगों ने विशेष ध्यान दिया था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि जनता की सहानुभूति कम्युनिस्टों के पक्ष में हो गई और इस दल की स्थिति उन प्रदेशों में बहुत अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ हो गई जो उनके शासन क्षेत्र में आते थे। कम्युनिस्टों को काबू में लाना चियांग काईशेक और उसकी सरकार के लिए सुगम कार्य नहीं था, यद्यपि उसकी सैन्य शक्ति कम्युनिस्ट लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक थी, पर अपने अधिकृत प्रदेशों में कम्युनिस्टों ने अपनी जड़ को इतनी दृढ़ता के साथ जमा लिया था कि उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। आइए अब हम आंतरिक सुधारों पर चर्चा करें। चियांग काई-शेक की नानकिंग सरकार के सम्मुख प्रधान कार्य यह था कि देश के अंदर विद्यमान विरोधी शक्तियों को अपने वश में लाकर चीन में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करे। इसके लिए उसे निरंतर युद्धों में व्यापृत रहना पड़ा, पर फिर भी उसने देश में आंतरिक सुधारों की उपेक्षा नहीं की। विविध सिपहसालारों और कम्युनिस्टों के साथ संघर्ष करते हुए भी उसने चीन में जिन आर्थिक और अनेक सुधारों का सूत्रपात किया उसके बारे में आइए हम जानते हैं। श्री टी वी सुंग के नेतृत्व में अर्थ विभाग का सुचारू रूप से पुनः संगठन किया गया। चीन की आर्थिक समस्या अत्यंत विकट थी, विदेशी कर्जों का उस पर भारी बोझ था, राजकीय आमदनी के अनेक महत्वपूर्ण साधन विदेशी राज्यों के पास जमानत के तौर पर रखे हुए थे। इस दशा में श्री सुंग ने जहां अनेक प्रकार से राजकीय आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया, वहां साथ ही सरकारी खर्चों में भी बहुत कमी की। इस समय चीन की कुमिंगतांग सरकार ने यह भी प्रयत्न किया कि आर्थिक क्षेत्र में विदेशी राज्यों का जो प्रभुत्व चीन में विद्यमान है उसे नष्ट किया जाए। श्री सुंग के प्रयत्न से चीन ने आर्थिक व्यवस्था में पर्याप्त उन्नति की। दूसरी, रेलवे का प्रबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन एक पृथक विभाग की स्थापना की गई। अब तक चीन की जो रेलवे लाइनें केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधीन थी उन सब का प्रबंध इस विभाग को सौंप दिया गया। साथ ही इस विभाग ने यह भी प्रयत्न किया कि नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाए ताकि चीन में एक व्यवस्थित शासन की स्थापना सुगम हो सके। इस विभाग की ओर से नई सड़कों के निर्माण का उद्योग किया गया। तीसरी, चीन की मुद्रा पद्धति में सुधार के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई और उसे विदेशी विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त कराया गया। चौथी, चीन के लिए नए कानूनों को व्यवस्थित रूप से बनाने का उद्योग किया गया। जो फौजदारी और दीवानी कानून अब तक चीन में प्रचलित थे वे प्रायः परंपराओं पर आश्रित थे, पर अब यह कोशिश की गई कि कानून के क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति पाश्चात्य देशों में हुई है उसका उपयोग कर चीन के सब कानूनों का नए सिरे से निर्माण किया जाए। छठी शर्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति, अफीम के सेवन का निषेध, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हित और कल्याण की व्यवस्था और शिक्षा प्रसार आदि के लिए अनेक नई व्यवस्थाएं की गई। 1914 से 18 के महायुद्ध के बाद जिस राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी चीन भी उसका सदस्य था। राष्ट्र संघ के सहयोग को प्राप्त कर नानकिंग की कुमिंगतांग सरकार ने इस बात का उद्योग किया कि चीन आंतरिक सुधारों के क्षेत्र में अग्रसर हो सके। पर इस समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि चीन की बहुसंख्यक जनता चियांग काई-शेक और उसकी सरकार के सुधार संबंधी कार्यों से संतोष अनुभव नहीं करती थी। इसका प्रधान कारण यह था कि सर्वसाधारण जनता की आर्थिक समस्या अभी हल नहीं हुई थी। बहुसंख्यक चीनी लोग अत्यधिक गरीब थे और उनके लिए अपना पेट भर सकना भी कठिन था। इसी का यह परिणाम था कि जहां कम्युनिस्ट लोग निरंतर शक्तिशाली होते जा रहे थे वहां साथ ही कुमिंगतांग दल का वामपंछी भाग चियांग काई-शेक के शासन से अत्यंत असंतुष्ट था। इसी कारण वामपक्ष के लोगों ने कैंटन में अपने पृथक सरकार की स्थापना कर ली थी। चीनी लोग समझते थे कि चियांग काई-शेक की सरकार पूंजीपतियों के हाथों में कठपुतली मात्र है, उसे सर्वसाधारण जनता के हित का कोई भी ध्यान नहीं है।